نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير نیکی کے سفیر اس میں سے آج ہم چار نمبر کہانی پڑھیں گے بولیے ذرا کیا نام ہے گھاٹے کا سودا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے کسی معاملے میں گھاٹے کا سودا نہ ہم سے کروائے سب سے بڑا گھاٹا کون ہے ان الخاسرون الذین خسروا انفسهم وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈالا قیامت کے دن وہ لوگ اخسرین اعمال ہوں گے تو دنیا میں یاد رکھیے کہ بہت سارے مواقع پہ انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نقصان نفع میں بدل جاتا ہے آج نفع کل نقصان آج خیر کل شر یہ میں اور آپ زندگی میں کئی بار دیکھ چکے کئی چیزوں میں پہلے نقصان ہوا پھر بعد میں نفع ہو گیا لیکن ایک گھاٹا ایسا ہے جو اللہ نہ کرے کسی کو پڑے اور وہ جب آ جاتا ہے جب وہ نقصان زندگی میں آتا ہے اس کا کوئی نعم البدل تو چھوڑ دیجئے اس جیسا بھی بدل کوئی نہیں نعم تو بڑی بات ہے نا اس سے اچھا تو دور کی بات ہے اس جیسا بھی کوئی بدل نہیں ہے اور وہ کون سا ہے کہ انسان ہدایت کی راہ پہ چلتے چلتے واپسی کا راستہ لے لے دعا کرے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے کہ جن کی زندگی میں ہدایت کی چکا چوند ہو چلیں شروع کریں اور اس کے بعد پھر وہ کسی اور ہی راستے میں چلے جائیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ زندگی میں یہ گھاٹا ہوتا ہے اور اس کا پتہ کب چلتا ہے جب انسان اس چیز سے محروم ہو چکا ہوتا ہے ہماری آج کی یہ کہانی بھی کچھ اسی قسم کے کردار کی کہانی ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے رہیں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرے کہانی شروع ہوتی ہے کتاب کا صفحہ نمبر 42 گھاٹے کا سودا وہ بڑا نامی گرامی شاعر تھا لیکن اب بڑھاپے کے نرغے میں آ گیا تھا اس نے ساری زندگی گمراہی میں بسر کر دی تھی مگر اب اچانک اس کے ارمانوں میں اسلام کی شمع جلنے لگی وہ یمامہ سے نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چلا تاکہ اسلام قبول کر لے اس نے اپنی سواری کا رخ مکہ کی طرف موڑ دیا وہ بہت خوش تھا کہ اب نبی آخر الزماں سے ملاقات ہوگی وہ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا جا رہا تھا مدح سرائی یعنی تعریف کرنا کیا ہیں اس کے اشعار علم تختمد عیناک لیلتا ارمدا وعادک ما عاد السلیم المسحدا اب آپ اس کے ترجمے میں سے اپنے ہوم ورک کے طور پہ اس شعر کا لفظی ترجمہ کریں گے یہ آپ اس کے ڈسکشنز میں اور اپنے جو بھی اس کی بعد میں چیزیں ہوں گی اسائنمنٹ وغیرہ اس میں یہ کریں گے میں آپ کے سامنے اس کا بامخابرہ ترجمہ رکھتی ہوں یقیناً تو نے اس طرح رات گزاری جس طرح آشوب چشم جو آنکھوں کی ایک بیماری ہے اس کا ذکر ہے آشوب چشم کا مریض رات گزارتا ہے یعنی جس کو نیند نہیں آتی تیری آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی بند نہ ہوئیں اور تیری وہ حالت ہو گئی جو سانپ کے ڈسے ہوئے اور آنکھوں میں رات گزارنے والے کی ہوتی ہے مطلب کیا کہ خوشی سے نیند نہیں آ رہی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوں گا اور میری آنکھیں آپ کا دیدار کریں گی پھر ایک اور شعر کہتا ہے الا ایھا السائلی این یممت فإن لها فی اہلی یسربا موعدا خبردار مجھ سے میری اونٹنی کے بارے میں پوچھنے والے کہ اس کا کدھر کا ارادہ ہے تجھے جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے اہل یسرب میں وعدے کی جگہ ہے یعنی اس کی محبت کا اظہار ہے ان اشعار میں بیسیکلی کہ مجھ سے کوئی پوچھے بھی نہ کہ میں جا کدھر رہا ہوں اور میری اونٹنی جو ہے یہ تو یسرب کی طرف جائے گی پھر آگے لکھتا ہے نبی یرا ما لا ترونا وذکرہ اغار لعمری فی البلادی وانجدا وہ ایسا نبی ہے جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے मुझे मेरी उम्र की कसम, इसका जिक्र अतराफो अकनाफ में फैला हुआ और इसकी जमात हर जगह मौजूद है। नबी सल्लम की मदह में कहता है कि आपकी तारीफ हर जगह है, इर्द गिर्द हर तरफ की जगहों में है। और सारी बातें ये बता रही हैं कि उसके दिल में कितनी सच्ची तड़प थी। फिर अगले शेर में कहता है, अजिद्दक लम तस्मा वसात मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी इलाही हैसु औसा वशहदा। बिला शुबा तूने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत नहीं सुनी, लोगों ने इस पर गवाही दी। इज़ा अंत लम तरहल बिज़ादिम मिनत तुका वला कई तबादल मौती मन कदा तजवदा। जब तूने दुनिया से नेक अमल का ज़ादे राह इख्तियार न किया और मरने के बाद इस शख्स से मुलाकात हुई जो दुनिया से तकवा का ज़ादे राह ले गया। यानी इस एक एक शेर से ये पता चल रहा है कि उसके दिल में तड़प बिल्कुल सच्ची है। मुराद है कि अगर इस दुनिया में नेकियों के इरादे नहीं करोगे तो फिर तुम्हें बाद में अफसोस होगा। फिर आगे कहता है, नदिम ताला अल्ला तकू नक मिसली ही व अन नकलम तुरसिद लिमा कान अरसदा। तो अपनी कोताहियों पर पशेमान हुआ कि तू इस जैसा क्यों न हुआ और इस चीज़ के लिए तैयारी ना की जिसके लिए इसने तैयारी की। जूँ जूँ वो सहरा के नशेबो फराज अबूर करता जा रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपसे मुलाकात का जज्बा बेताब भी बढ़ता जा रहा था। इसने बुतों की पूजा छोड़ने और इस्लाम कबूल करने का पक्का अज़्म कर लिया था। वो मदीनतुर रसूल के पास पहुंचा तो मुशरिकीन के कुछ लोगों ने इसे रोक लिया। पूछा, कहाँ का इरादा है? बूढ़े शायर ने साफ बता दिया कि मैं पैगंबरे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहा हूँ और इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मुशरिकीन को ख़तरा लाहिक हो गया अगर ये शायर मुसलमान हो गया। सोचिए ज़रा उनके तहफ़ुज़ात क्या थे। ये शायर है और शायर तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो कहा कि अगर ये शख्स मुसलमान हो गया तो अपनी शायरी के ज़रिए से लोगों के जज्बात भड़काएगा, लोगों को हमारे माबूदों की इबादत से रोकेगा। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मज़ीद मज़बूत हो जाएगी। यहाँ भी नुक्ता नोट करें, मुखालिफ कभी नहीं चाहते कि आपके कदम जमें किसी चीज़ में। हमें तो एक शायर हसान बिन साबित रदी अल्लाह अन्हो ने ही परेशान कर रखा है। इस अकेले ने न जाने कितने लोगों के दिल इस्लाम की मोहब्बत से गरमा दिए हैं। अगर अरब का ये नामवर और बेमिसाल शायर भी मुसलमान हो गया तो हमें नाकों चने चबवा देगा। मुशरिकीन ने मक्का अरब के इस बूढ़े शायर, इसका नाम क्या है, आशा बिन कैस, आशा बहुत मारूफ शायर है, किसी से भी पूछिए अरबी बोलने वाले सीखने वाले तो इसका कलाम उस दौर में बड़ा फेमस था। यानी ही वॉज़ अ फेमस पोएट एट दैट टाइम। क्या नाम है, आशा बिन कैस। इसको रोकने लगे और इसे अपने आबाओ अजदाद की गैरत दिलाने लगे और कहने लगे, आशा तुम्हारा दीन और तुम्हारे बाप दादा का दीन सबसे बेहतर दीन है। आशा ने जवाब दिया, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ही बेहतर और सच्चा दीन है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने एक और हरबा इख्तियार किया, बूढ़े शायर को वरगलाने और इस्लाम कबूल करने से रोकने के लिए एक और हरबा इख्तियार किया। सोचिए ज़रा, और इस पे बहुत केयरफुल होके सुने क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग यही हरबे इस्तेमाल करते हैं लोगों को सच्चे दीन से दूर करने के लिए। क्या कहा उन्होंने, कहा, आशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिना को हराम करार देते हैं। यानी उसको इस चीज़ का एहसास दिलाया कि अगर तुमने मुसलमान होने का इरादा किया है तो याद रखना कि जिना तो हराम है। अशा बोला, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अब औरतों से क्या वास्ता। यानी उन्होंने सोचा कि शायद इस बात से हम इसको वरगला लेंगे। मुशरिकीन बोले, वो शराब को भी हराम कहते हैं। अशा बोला, शराब तो अक्ल का खात्मा कर देती है, अच्छे भले आदमी की रुसवाई का सबब बनती है, मुझे शराब की कोई ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने देखा कि अशा अज़्मे समीम कर चुका है और अपने इरादे से टलने वाला नहीं, तो उन्होंने एक और शैतानी हथकंडा अख्तियार किया। वो इसे लालच देने लगे, कहने लगे, हम तुम्हें 100 ऊँट देते हैं, तुम इस्लाम का इरादा छोड़ दो और अपने घर की राह लो। कीचड़ में हाथी भी फिसल जाता है। मुशरिकीन ने इस्लाम की राह से हटाने के लिए माल की चमक दिखाई तो बुड्ढा शायर फिसल गया। इसने गौर व फिक्र शुरू कर दिया, ये तो बहुत बड़ी दौलत है। शैतान ने इसकी अक्ल पर पर्दे डाल दिए। अशा बिन कैस ने मुशरिकीन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की, लाओ मैं तुम्हारी पेशकश कबूल करता हूँ। उन्होंने 100 ऊँट इकट्ठे किए और अशा को दे दिए। वो 100 ऊँट लेकर हालते कुफर ही में अपने घर की तरफ चल दिया। ऊँटों का रेवड़ हंकाए लिए जा रहा था और बड़ा खुश था। दिल ही दिल में सोच रहा था, मैंने शायरी के जरिए से बड़ी दौलत जमा कर ली है, अब मैं बड़ा मालदार हो गया हूँ, मुझे किसी की मोहताजी नहीं रही। लेकिन भूल गया कि अल्लाह ताला भी इसकी घात में है और हर दम देख रहा है कि वो किस तरह दुनिया के घटिया सामान के इवज अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है। हालांकि ज़मीनों आसमान के मालिक कौन है? अल्लाह की ज़ात। खजाने किसके हैं? अल्लाह के। तो ज़मीनों आसमान के सारे खजाने तो अल्लाह ही के पास हैं। ज़रा सा यहाँ रुक कर दर्द को महसूस करें। आज कितने ही लोग इस दुनिया दनी के सौदागर होते हैं, उसने तो 100 ऊँट ले लिए, यहाँ तो और बहुत कुछ मिल जाता है, सिर्फ शोहरत, तारीफ, दुनियादारी, और यही हुआ। तो देखिए ज़रा इस बदबख्त के साथ आगे क्या हुआ। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमन, दो चार हाथ जबके लबे बाम रह गया। यानी इंसान बहुत करीब हो जाए मंजिल के और मंजिल ना मिले, इसके लिए ये शेर पढ़ा जाता। बुढ़ा शायर कुशां कुशां अपने घर के करीब पहुंचा ही था कि अचानक ऊंटनी से गिर गया, इसकी गर्दन टूट गई और वहीं सिसक सिसक कर मर गया। ऊंटों का रेवड़ धरा का धरा रह गया। इसने अपनी दुनिया भी गंवा दी और आखिरत भी बर्बाद कर ली। ये खुले बंदों घाटे का सौदा था। अफसोस इस नादान इंसान पर जो अल्लाह के रास्ते से भागे और दुनियावी चमक दमक पर रीझ कर घाटे का सौदा करे। करता है कोई सौदा? ये हर गली हर कोने में ये सौदे हो रहे हैं, याद रखिए। इंसान इस तरह के काम करके अपनी दुनिया बनाना चाह रहा होता है, लेकिन बनती कहाँ? मलाल ये है कि ऐसा अक्सर होता है। बसा औकात इंसान हक को पहचान लेता है, इसकी पैरवी का शौक भी रखता है, लेकिन इस फानी दुनिया के आरजी फायदे की खातिर धोखे में आ जाता है, अपने रब की नाफरमानी पर अड़ा रहता है। दुनिया का करोफर, सज धज, शानो शौकत और बुरी सोहबत दीन पर इस्तकामत इख्तियार करने की राह में आड़े आ जाती है। वो दुनिया की पुरकशिश चीज़ों की तरफ लपक पड़ता है और मौत का बेरहम हाथ इसकी गर्दन दबोच कर इसे कब्र के घड़े में फेंक देता है। काश नादान इंसान ये हकीकत समझ ले कि आखिरत की ज़िंदगी और इसकी नेमतें बेमिसाल और हमेशा बाकी रहने वाली हैं। तो ये थी कहानी, और किताब का हवाला भी नीचे लिखा हुआ है। सीरा इब्ने हशाम, किस्से अशा और सीरो नबूवा इब्ने कसीर की किताब भी है, जिसमें अशा बिन कैस का किस्सा पेज 78 पे। क्या सीखा? उदास करने वाला किस्सा था जी। अब आप लोग अपना इनपुट दें, फिर मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी।
जब वो फिसला तभी शैतान ने उसको आगे एक स्टेप ले जाकर भड़काया, और अगर वही शायद वो जो कहते हैं कि शैतान सबसे पहले क्या करता है, विस्पर करता है।
अखलदा इलल अर्दी, आपको पता है कि सूरत अल अराफ में एक पूरा किरदार है, अल्लज़ी आतैनाहु, अल्लाह ताला ने उसको किताब का इल्म दिया था, लेकिन मुंह लटका, जब राल टपकी, दुनिया का लालच आया तो ज़मीन से झुक गया। बहुत ही बदबخت है, बिल्कुल वही किरदार है ये भी, कि अल्लाह ने हिदायत की राह दिखाई और इसको पढ़ते हुए वो नहीं आयत याद आ रही कि कुछ लोग चल पड़ते हैं पीछे। भी हमने कल वाली कहानी में भी देखा था ना, कुल्लमा दा लहुम मशौफी। अल्लाह ने रोशनी दिखा दी लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
पढ़ते हुए लग रहा है कि ऑब्वियसली ये इंसान कितना बेवकूफ था, लेकिन हम ऐसी डिसीजन डे टू डे में करते रहते हैं।
इसको देखकर तो लग रहा है कि ये बेवकूफ़ था, लेकिन अमूमन लोग इस तरह का मामला करते हैं।
जब भी कोई काम करें तो अपनी आखिरत को आगे रखें और ये सोचें कि ये इस काम से मतलब मेरे आगे के लिए फायदा है कि नहीं।
जी, जब कोई काम करें तो आख़िरत को सामने रख लें।
चाहिए कि जब तक नेकी कर ना ले किसी को बताए ना, क्योंकि
जी,
कोई ना कोई रुकावट हो
टूट
जाती है।
जाती है। ये भी बहुत अच्छा नुक्ता है कि इसने इजहार कर दिया ना, तो बाज़ दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो भी बंदे के रास्ते की रुकावट है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने मामले अख्वा पे रखो, जिसने अपना मामला छुपा लिया उसने सिक्योर कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कच्ची खुशियों को बहुत ज़्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। जी आप जी बिल्कुल, कि जब बहुत छोटे से पौधे को मिट्टी से निकाल दिया जाए तो हवा लग जाती है, उसको दोबारा दबाएं तो वो दोबारा उगता नहीं है। हमारे बड़े कहते थे पकते खाने का ढक्कन ना खोलो, जब बार बार ढक्कन खोलते हैं एक तो उसकी खुशबू उड़ जाती है और चावल का दम टूट जाता है। ये सारी बातें कही हुई है ना, और मैं आपको जो बात कहना चाह रही हूँ ना, वो समझिए, खरा ईमान नहीं था। आप इसके मुकाबले पे ज़रा मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन के जादूगरों को सोचिए। चंद लम्हे पहले फिरौन से मुराद मांगने वाले लालची मुशरिक जादूगर, तीन गुना है उनके। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुबह के वक्त यानी वो लोग जहन्नमी थे और चाश के वक्त जन्नती बन गए। फिरौन ने उनको थ्रेट भी किया था और फिरौन ने उनको धमकियां और लालच भी दिए, लेकिन जब सच्चा ईमान अंदर आता है ना तो बंदा नहीं पलटता। इससे पता चलता है कि वो ओपरे दिल का ईमान था। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए ना कि कल के दौर में तो ये लोग मुसलमान होने के लिए निकलते थे ना, आज मैं और आप इसको अपने हालात पे लेते हैं। कई दफ़ा नेकियों के इरादे, कितने लोग हैं जिन्होंने आपका ये कोर्स करने की नीयत की होगी, आपको पता है? आपसे ज़्यादा होंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने सबीरुल जन्ना की नीयत की, 2-4 दिन आए, शुरू भी किया फिर निकल जाए। कितनों ने अभी आगे भी क्या कुछ करना है आपको तो अभी पता ही नहीं, अपनी फिक्र करें। कल वो इस्लाम की तरफ आते थे और दुनिया का कोई फ़ायदा नज़र आता था तो पलट जाते थे, आज हम ये जुमला लिख ले, ये कोड वर्ड, ये जम है, कल लोग इस्लाम कबूल करते थे, आज लोग कुरान कबूल करते हैं। कल इस्लाम कबूल करके शख्सियत बदलती थी, आज कुरान कबूल करके शख्सियत बदलती है। इसीलिए शैतान कुरान की तरफ नहीं आने देता। और कल इस्लाम कबूल करके कुर्बानियां देनी पड़ती थी, आज कुरान कबूल करके कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अल्लाह की एक सुन्नत लिख लें, कुर्बानियों की ज़मीन पे हिदायत के पौधे लगते हैं। अगर आपने मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, कुर्बानी नहीं किया, हिजरत ही नहीं की, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। बस आप देखिए ना कि बेटे की गर्दन पे छुरी रखी हज़रत इब्राहिम ने, ये अलग बात है चली नहीं छुरी, वो तो कर चुके थे ना, दिल तो बड़ा कर ही लिया होगा। ज़रा से सोचे ना, बेटे की गर्दन पे छुरी जब रखी, चला भी दी, ये तो बाद में रिजल्ट्स बदल गए ना। हज़रत इब्राहिम तो अपने उस इम्तिहान में पूरे हो गए। इस क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, यानी आप कह लीजिए ये ऐसे ही है कि एक बच्चे ने इम्तिहान की पूरी तैयारी करके इम्तिहान दे भी दिया। ये अलग बात है कि बाद में रिजल्ट्स कुछ और निकले, ऐसे ही है ना। कुर्बानी करना ही असल बात थी। अल्लाह बास दफ़ा मेरे आपके हालात इसलिए भी ख़राब करता है कि देखूं तो सही करता क्या है। होना हवाना पीछे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होना। कल मुझे अपने एक बहुत ही प्यारी अजीज़ साथी हैं हमारी एडमिन, तो उनकी शेयरिंग मिली। यकीन करें आवाज़ों की पहचान का डर होता है, वरना मैं आपको पब्लिकली सुना दूं कि कितना बड़ा सच उन्होंने कहा कि उस्ताजा इस रास्ते में बाज़ दफ़ा इतनी बड़ी मुश्किल आ जाती है कि जान निकल जाती है, ऐसे लगता है अब सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जमे रहो तो फिर ऐसे चली भी जाती है जैसे आई भी नहीं थी। इट्स ट्रू, ये सच है। आपकी मेरी कई दफ़ा जान निकलेगी इस रास्ते में, और अगर आप पलट गए पीछे से, अच्छा नहीं फिर नहीं, आई कैन, मैं नहीं छोड़ सकती, नहीं मेरे मजबूरी, मेरे हालात, फिर चले जाइए। और अगर आप जमे रहते ना तो वो मुश्किल चली ही जानी थी। देखिए इसको मैं एक ही दफ़ा समझती हूँ और इंजॉय करती हूँ। आपके सामने अब बच्चा आ जाए, उसके हाथ में दो कैंडियाँ और वो खा रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं, गिव मी वन कैंडी। अब आप कहते हैं मुझे कैंडी दो, तो वो बच्चा क्या कहेगा, मैं नहीं दूंगा, हाथ पीछा करेगा, बच्चे बखील होते हैं। तो आप उस कैंड पे क्या कहते हैं, वो मैंने कौन सी लेनी थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दिल देख रही थी, है ना। अल्लाह भी हमारा दिल देख रहा होता है। ये तो कुछ भी नहीं है चीज़ें, ये जिन जिन हालात से आप सब इंशाल्लाह गुजरेंगे और गुजरे, ये आप सबका टेस्ट है, ये किसी और का टेस्ट नहीं है, ये मेरा टेस्ट है, ये आपका टेस्ट है, दूसरों का ये मरहला ही नहीं है, ये उनके तो किसी काम की कोई बात ही नहीं है। आप मैं यहाँ भी बहुत खुश हैं, हमारी इतनी जगह, हम इस पर मुतमिन बैठे रहे, कोई बात नहीं, हर 6 महीने साल बाद एक झटका लगेगा, फिर सेट हो जाएंगे, पर ये इम्तिहान आपका है कि आपको अगली क्लास में जाना है कि नहीं जाना, यू वॉन्ट टू ग्रो और नॉट। और यकीन करें ये बात लिख लें, मैंने ये चीज़ देखी है कि जब आप एक जगह का हक देने लग जाते हैं ना, अल्लाह आपको उससे बड़ी देता है, फिर आप उसका हक अदा करते हैं तो अल्लाह उससे बड़ी देता है। और ये बात भी मैंने बचपन से समझी अपने घर से ही, हमारे वालिद कहा करते थे कि बंदे की मिसाल अल्लाह के रास्ते में कैसी है, जैसे एक शख्स अपनी जॉब नई नई शुरू करता है, मिसाल देते थे बैंक की, आप ये रॉजवेल की किसी छोटी सी ब्रांच में एक मैनेजर बना दिए जाते हैं और वो आपको 10,000 रुपये देते हैं, जाइए जिसकी ट्रांजेक्शन्स संभालिए, आप रॉजवेल के इर्द गिर्द के चंद अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करते हैं, और एक दो चार 6 महीने में बहुत अच्छा वो शख्स काम करता है, वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा काम करता है, वो आपको यहाँ से उठाएंगे ना तो आपको इससे ज़रा सा दूर किसी बड़ी कैबिन में ले जाएंगे, वहाँ वो आपको $1,00,000 दे देंगे, चलिए जी जाइए इसकी ट्रांजेक्शन कीजिए, जब आप वो कर लेंगे ना तो पकड़ के आपको मेन ब्रांच जो पूरे USA के ऊपर कंट्रोल करती होगी उसका हेड बना देंगे। बंदा जब छोटे छोटे काम हिदायत के, दीन के, अल्लाह के रास्ते के करने लग जाता है तो अल्लाह उसको उससे बड़े देता है, बड़े करेगा तो उससे बड़े देगा। ये अभी ट्रिप में मैंने बीसियों जगह साथियों को यही जुमले बोले हैं कि आप छोटी नेकी को लब्बई कहिए, बड़ी नेकी सामने आ जाएगी, और करीब की नेकी को ओके कीजिए, दूर की नेकी आपके करीब आएगी। आप एक नेकी का काम कर लें, अभी ख़त्म ही नहीं होगा, आपके पास दूसरा ऑर्डर आएगा। देखिए एक फैक्ट्री है ना, बस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वहाँ लेदर की जैकेट्स बनती हैं, उन्होंने सैंपल भेजा बनाकर कुछ मुल्कों में, सैंपल बड़ा पसंद आया, हर एक ने कहा, किसी ने कहा हमें 100 जैकेट भेज दें, दूसरे ने कहा हमें 50 भेज दें, किसी ने 200 मांगी। अब क्या होगा, वो फैक्ट्री काम करना शुरू हो गई, दिन भर काम करेगी। आप पहले एक दो सैंपल गए थे तो हुआ, आप जहाँ 100 जैकेटें गई वो भी बहुत अच्छी थी, तो अब उस 100 वाले ने ऑर्डर देना है 1,000 का, और जिधर 200 गई थी उसने 2,000 का ऑर्डर देना है। अब एक दिन ऐसा आएगा कि वो फैक्ट्री दिन रात चलेगी, सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, सुबह के वर्कर, शाम के वर्कर। अब मुझे बताइए कि क्या उस फैक्ट्री में मज़ीद ऑर्डर्स का आना कोई सज़ा है, कोई मुश्किल है उनके ऊपर, वो उस फैक्ट्री वालों पे या ऑनर पे या जो वहाँ के मैनेजर्स हैं, ये कोई बोझ है, ब्लेसिंग है, ये दीन में होगा। आप नहीं चाहते ना काम करें, खराब काम करें, थोड़े दिन बाद आपसे जान छूट जाएगी उनकी और आपकी उनसे, फिर अल्लाह अपने और अंधों को ले आएगा। आप अच्छा काम करें, आपको कभी कोई जाने नहीं देगा, हर कीमत पे आपको कहेंगे नवी वॉन्ट्स यू, जैसे हजरत यूसुफ को बुलाया था बादशाह ने, हिदायत के ऑर्डर आने शुरू हो जाएं। और ये मत कहा करें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे, आटे में नमक भी नहीं कर रहे, क्या कर क्या रहे हम लोग, कुछ भी नहीं किया, ये शुक्र करें कि और ऑर्डर आए, ये हमारी इसलाह हो रही है, अल्लाह हमें मौके दे। साथ साथ आप कहते पहले हम खुद सीधे बोले, हमें अभी खुद ही कुछ नहीं आता, हाँ जो काम करने बैठे उसकी आप एक्सीलेंसी लें, लेकिन अगर आपको जगह सेट करनी आती है, आपको बच्चों को बुलाना आता है, आपको फ्लायर बनाने आती हैं, तो आप जितने मर्जी बनाइए, इस वक्त तो दो दो हाथ से काम करने की ज़रूरत है। बाज़ लोग क्या कहते हैं, नहीं अभी हमारा अपना इल्म पुख्ता नहीं हुआ, हम आगे कहाँ जाएँ, ठीक है आप इल्म ने पुख्ता नहीं, जो चीज़ आपकी पुख्ता वो देनी शुरू कर दें, अल्लाह ताला हिदायत पे ले आएगा। अब इस शख्स को देखे, और शायर के बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ है मुझे, और मैं आज जब ये इसकी कहानी पढ़ रही थी और मुझे दुख इतना हो रहा था कि शायर अमूमन बहुत सेंसिटिव होता है, दूसरों से ज़्यादा बारीक बीन होता है, उसको वो बात नज़र आ जाती है जो दूसरे को नहीं आती, लेकिन आप देखिए कि सारी दुनिया के कलाबे मिलाने वाला हिदायत से दूर हो गया। और एक और चीज़ आपने नोट की है, बिल फर्ज उस शख्स को पता होता कि मेरी मौत में अब कुछ दिन रह गए, ज़रा पलट गया ना। अगर इसको पता होता कि मैंने 2 4 दिन ही और जीना है, तो क्या ये 100 ऊँटों की कीमत लेता? बोझ बबाल मुझे आपको पता लग जाए, हाँ कि मेरे भी दिन थोड़े गिने हुए। हम तो वही कहेंगे, लौला अखरत नीला जलिन करीब, फरिश्ते मौत थोड़ा सा ठहर जा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। क्यों? फासद्दका वाकुम मिनल सालेहीन, सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत है। ऐ मौत के फरिश्ते, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं दो काम कर रहा हूँ। बहुत लंबी मोहलत नहीं मांगता, अजलिन करीब, वेरी फ्यू टाइम। नंबर एक असद्दका, तिजोरी भरी पड़ी है, ज़रा सदका करो। अभी तो मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, और मैं ज़रा दे हूँ अपने हाथ से फारिग कर रहा हूँ। और वाकुम मिन असाले, मैंने बड़ी नेकियाँ पोस्टपोन की हुई थी, तो मैं कुछ नेकियों की जो नीयतें थी उसको फुलफिल कर लूँ। और याद रखिए, ये इम्तिहान हमारी असल परखने के लिए होता है। ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आता है, कुरान की आयत मौजूद है सामने मेरे, अल्लाह ताला ने कहा ये क्यों बदर और ओहद के मार के हुए, वली यालम अल्लाहुल्लज़ीना, ताकि अल्लाह जान ले उन लोगों को, मिनकुम तुम में से, जो ईमान लाए और जिन्होंने निफाक किया। ये इम्तिहान आता ही हमारे दिल की असल हालत खोलने को है। और जब भी दीन के रास्ते में कोई इम्तिहान आता है ना, तो उसके दो फायदे होते हैं, दो फायदे होते हैं। जो दिलों में थोड़ा बहुत निफाक और खोट खपट होती है ना, अल्लाह के हुक्म से वो निकल जाती है, यानी दिल पाक हो जाता है, या फिर इस्लाम ऐसे लोगों से पाक हो जाता है जो खोटे होते हैं। बात समझ आई है? अल्लाह थोड़ी सी आलाइश के साथ भी किसी को इसमें नहीं रखता। एक छोटा सा घुन लगा हुआ दाना आप छोड़ दीजिए चावलों में, चंद दिन बाद पूरी बोरी में कीड़ा पड़ जाएगा। अल्लाह ने इस काम के लिए प्योर, क्लीन, मजबूत, ठुके हुए लोग चाहिए होते हैं उसको। क्योंकि देखिए ना, आप इस बिल्डिंग को देखिए, तो छोटी सी बिल्डिंग है, अगर इसकी बुनियादें नीचे शीशे की होती, नाजुक अंदाम लोग होते, यानी शीशा डाल दिया जाता है इसकी बुनियादों में, तो क्या ये 2 फ्लोर भी बन पाते? नहीं बनना था ना। और अगर इसके अंदर जो बुनियादों में कह लीजिए कि सीमेंट और जो कुछ भी इन्होंने डाला होगा, उसमें कोई ख़राबी होती, तो क्या ये बिल्डिंग कायम रह सकती थी? बुनियादों में ठुके हुए लोग चाहिए होते हैं, मंझे हुए लोग चाहिए होते हैं। वो नहीं होते जिनको ये कहा जाए कि तुम नेकी करो, वो होते हैं जो कहते हैं हमें बताएं हम नेकी क्या करें, हम क्या करें। यस सलून का माजा युनफिकुन, आज के हालात से बिल्कुल अपोजिट हालात। और अल्लाह के नबी की ये असल चीज़ जो थी, मैं सोचती हूँ कि दैट वाज द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग जो अल्लाह के नबी के ज़रिए से हुई, कि आपने सहाबा की तरबियत ऐसी की थी कि वो खपने को, लगाने को, लुटाने को, ख़त्म होने को वो ज़िंदगी समझते थे। तो अल्लाह से ये दुआ करें कि मेरे साथ ऐसा ना हो। और आप इसको सिर्फ इस्लाम और कुफर की जंग में ना सोचें, आपके लिए मेरे लिए इसमें से अमल की बात है। सवाल लिखिए, जब मेरे सामने किसी नेकी का मौका आता है, तो मेरा जोश और जज्बा कितना होता है? और जब मैं नेकी के रास्ते पे चल पड़ती हूँ और रास्ते में कोई तरगीब या तरहीब आती है, यानी रगबत या खौफ, यानी होप और फियर, कुछ भी लिख लें, तो मेरा रद्दे अमल क्या होता है? जब तक शुरू में जोश ना हो ना, बाद में जोश आता ही नहीं है। नया नया इस्लाम, नया नया ईमान बंदे के अंदर एक हलचल मचाता है। किसी को आयतें याद आ रही हैं सूरत रात की? एक मिसाल अल्लाह ताला ने दी झाग वाली। अगर नए ईमान पहले प्यार में जज्बा और जोश ना होगा, तो दूसरे प्यार में खाक होगा। जवानी में अगर मोहब्बत के जज्बे नहीं उभर रहे, तो बुढ़ापे में जाके आएंगे जज्बे। याद रखिए, ये उमंगों का नाम है। इस शख्स को अगर इस वक्त हिदायत मिलती, और मैं इसको ये सोच रही थी अपने दिल में कि अगर ये उस वक्त उन दोस्तों की बातों को या कुफर के अलमबरदारों की उस पेशकश को नो कह देता, तो इसकी कहानी जरबुल मिसल बनती। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में कहा, इसने ईमान लाकर अमल कुछ भी नहीं किया और जन्नत में चला गया। एक और वाक्य है कि मैदाने जंग में आप थे और एक शख्स दूर से आया और आपके हाथ पे कलमा पड़ा, साथ ही जंग का दौर था, जंग में चला गया अंदर और उसके बाद शहीद हो गया। जब उसकी डेड बॉडी देखी तो आपने फरमाया, ये वो शख्स है जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, कोई ज़कात नहीं दी, यानी इसको मौका ही नहीं मिला, और इस्लाम लाया और बग़ैर कोई ऐसा अमल करके जो फ़र्ज था अल्लाह के पास जन्नत में पहुंच गया। तो हमेशा दुआ करें कि अल्लाह अंदर का खोट है तो निकाल दे, बाहर खुद ही फेंक दे, मुझे शर्मिंदा ना करना। और एक बात याद रखिए, अंदर खोट और बाहर दीनदारी हो ना, दुनिया में निकलती है, बदनामी हो के रहेगी, कोई बहाना बनेगा, हम छोड़ देंगे वो काम, कहीं अना पे चोट, कहीं जात पे चोट, कहीं माल का नुकसान। और एक जुमला आखिरी करके आगे चलती हूँ कि बस दफ़ा मजबूरियों के पर्दे में हमारी मुनाफ़त छुप जाती है। मुबारक है उन लोगों को जो मजबूरियों की वजह से पीछे हटे, मजबूरी ना भी होती ना, उन्होंने फिर भी पीछे ही हटना था, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया उनके ऊपर, वरना जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अल्लाह अकबर कबीरा।